इसलिए ये नदियां बड़ी धन्य है। तो दुर्भागा जगत में है तो हम लोग हैं, हमारे कुल में जन्मे, और कृष्ण से हम मिल नहीं सकती हैं, न बोल सकती हैं, न कोई कुछ कर सेवा कर सकती हैं। हम लोगों को तो पति पुत्र इत्यादि की सेवा रूप गृह कार्यों में भी कभी विराम नहीं है। विराम माने फुर्सत नहीं, हम सब समय उसी काम में लगे रहती हैं। और कहा ये नदियां सब कुछ छोड़ करके, बहना भी छोड़ करके, और कृष्ण के चरणों का आलिंगन कर रही है। विशेषतः प्रकट भावे भजन उचित वेशभूषा धारणे नैपुण्यों ने, हम लोग तो वैसा भजन भी नहीं कर सकते हैं, साधन भजन भी नहीं कर सकते। ऐसे हम लोगों के लिए गुरु वैष्णव भी हैं, सब कुछ है, किंतु हम लोगों में ऐसी उत्कंठा तीव्र नहीं है कि अपने चित्त वृत्ति को सांसारिक विषयों से मोह से मुड़ करके भगवान और हरि गुरु वैष्णव के तरफ में ला सकें। मानो इसी चीज का उपदेश देती हुई ये नदियां संदेश दे रहे हैं, या उनके माध्यम से ये गोपियां आदेश दे रहे हैं। बन लता स्तरवा आत्मनि विष्णु व्यंजन व्यंजयंत इव पुष्प फलाद्या प्रणत भार पितपा मधुधारा प्रेम रहिष्ट तनवो वपृषु उष्मा। ये जुगल गीत है, पहले हम लोग अभी वेणु गीत से कर रहे थे, अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी इस जुगल गीत से। जुगल गीत का तात्पर्य क्या, दो दो श्लोकों में एक एक युथ की ईश्वरियां युथेश्वरियां इस गान को कृष्ण के विरह में कह रही हैं। उससे भी अधिक वो पूर्व राग था बेंगी। और ये है मिलन के बाद में विप्रलम्भ में भाव विरह में आतुर होकर के ये कह रही हैं, ये पूर्व राग का नहीं। बल लता सर्व आत्मनि, ये ऐसे ही कृष्ण को पाने के लिए जिसमें उत्कंठा होगी उसी दिन कृष्ण मिलेंगे, और ऐसे वैष्णव भी मिल जाएंगे। कृष्ण की व्यवस्था है, एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है, जो विश्व में जितने जीव हैं वो सब क्या मधुर रस के ही हैं, और मान लिया कि वो भजन करते हैं, वो रामानु संप्रदाय हैं, रामायण संप्रदाय है, निम्बार्क की हैं, बल्लभाचार्य का वात्सल्य भाव से इत्यादि से करते हैं। कुछ लोग हैं जो इसे कोई संबंध ही नहीं है, ईसाई लोग हैं, और लोग हैं, यमन लोग हैं, अपने अपने पद्धति से करते हैं वो सब। तो सभी लोग इधर क्यों नहीं आते, कहते भगवान ऐसे दयालु हैं कि ये सब विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था उनके हाथ में है, जो जैसा अपने कर्मों के अनुसार में है, एक तो उसके अनुसार में फल भोगा रहे। जीव का उसमें से किसी न किसी रस में अवश्य स्वरूपगत भाव है, जरूर है, किसी न किसी में तो जरूर है। पांच प्रकार के भाव बतलाए गए, शांत दास सख्य वात्सल्य मधु, सबका किसी न किसी रूप में है। और अनंत वर्षों से जिसको कहते हैं अनादि काल से जीव जन्म ले रहा है, मर रहा है, तरह तरह के लोगों को प्राप्त, फिर यहाँ पर आ रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। ये द्वापर के अंत तक या त्रेता खत्म हो गया है, उस समय तक लोग साधारण रूप में सतयुग में शांत भाव से उनकी उपासना करते हैं अधिकांश, और बहुत से लोग हैं जो भजन से कोई तात्पर्य ही नहीं है, केवल भारतवर्ष में सतयुग में लोग शांत रूप से भगवान की उपासना करते हैं, बाकी सब अपने अपने कर्मों का फल संसार में भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। उसमें जिनका परम सौभाग्य होगा वो सतयुग में भारतवर्ष में आर्यावर्त में वो लोग जन्म लेंगे, और उनमें से कुछ इन्हें गुने चुने हुए ही संस्कार ऐसा होगा जो सनक सनंदन सनत कुमार की भांति अथवा नर नारायण की भांति उपासना करेंगे शांत रस। इसके बाद में रामचंद्र जी आते हैं, उसमें दशरस की प्रधानता देते हुए जगत में कुछ शिक्षा देते हैं, और हनुमान इत्यादि रामचंद्र जी के बाद भी जगत में रह जाते हैं जो इस भावों का प्रचार करते हैं। उसके बाद में द्वापर के अंत में कृष्ण जी आते हैं, लताओं को भी प्रेम देते हैं किंतु सौभाग्यवान जीव, और ऐसी लीला करते हैं कि उन लीलाओं को श्रवण करके जीव क्रमशः हमारे तरफ में उन्मुख होकर के इसी का श्रवण और कीर्तन करके इन लीलाओं का हमारे लीलाओं के प्रति हमारे प्रति आकृष्ट होगा, इसलिए लीला करते हैं। अभी तो सामने जो है सो है, पीछे से जो जीव इन्हीं लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेंगे विशेष करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से, वो जीव इस भाव को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, इसलिए श्रीमद् भागवत इत्यादि। इतने में भी जीव भगवान की तरफ पे जब नहीं आए उतने बहुत इने गिने, कृष्ण अपने नित्य मुक्त परिकरों के साथ में ही लीलाएं की, उसमें कुछ कुछ बद्ध जीव आकृष्ट हुए उस लीला को समझ नहीं सके, बल्कि कुछ लोग उनके विरोधी कंस प्रभृति जरासंध कर्ण दुर्शासन और शिशुपाल इत्यादि उनके इस भाव की निंदा करने लगे। अरे ब्रज में वो जो कोई जाति का ठीक नहीं, पाति का ठीक नहीं, माँ बाप का ठीक नहीं, वो द्वारका में राजा बना हुआ है और हमको हमारे ऊपर में शासन करेगा, कितने गंदे आचरण का दुराचारी लड़का उनके भाव। जिसलिए कृष्ण का यह स्वरूप एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान इसी के लिए कहे गए जिनमें ये सब भाव है जो ब्रज में दिखलाया और कहीं नहीं दिखलाया, और उसी के लिए उनकी वो निंदा करते हैं। इसलिए बहुत कम लोग कृष्ण के सानिध्य में गए और इनके भावों को ग्रहण कर लिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को छोड़ दिया, ये आप रह करके भागवत को भागवत रूपी सूर्य को प्रकाश कीजिए, इसलिए दूसरा नहीं कर सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है, आप लीला सुख हैं, लीला सुख ने राधा जी के और कृष्ण के लीला सुख हैं, आप सब चरित्र को जानते हैं, आप में सामर्थ्य हैं, इसलिए कुछ रूप ऐसा कीजिए जो भागवत का प्रकाश हो सके। परीक्षित महाराज जी को सांप कटवा करके और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जगत में इस भाव को प्रकाश करें, किंतु तो भी लेने में योग्य नहीं रहे, रामानुजाय शंकराचार्य इसके बाद में मध्वाचार्य इसके बाद में रामानुजाय और सब लोग आए, उन्होंने दास्य भाव उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ सख्त भाव मिला, बस इतने ही तक जगत में पहुंचा। जब चैतन्य महाप्रभु आए उनके परिकर आए तब उन्होंने कृष्ण की उन लीलाओं को भागवत के माध्यम से उसको प्रमाणिक मान करके और उसके द्वारा जगत को प्रेम दान किया। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे ब्रजेंद्र नंदन, भागवत में कही हुई जो बातें हैं ये सब जो बातें हैं अभी जो बतला रहे हैं, वनस लता सर्व आत्मनि विष्णु व्यंजयंत पुष्प फलाभ्य, गोपियां जैसे तन्मय होकर के कृष्ण के लिए शरीर की सुख बुद्धि छोड़कर अत्यंत व्याकुल होकर के कृष्ण के मिलने की उत्कंठित है, किस कृष्ण को खोज रही हैं, सखा कृष्ण को है? अपने प्रियतम कृष्ण को। यदि कोई ऐसा ही व्यक्ति जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन भावों से अपने में संकृत माने संचरित करके और तब ऐसा आकुल व्याकुल होकर के भगवान के लिए भगवान को अपना सखा पुत्र अथवा प्रियतम मान करके यदि ऐसा ही कोई ढूंढे और ऐसे भक्तों के पास में जाए और इन्हीं कथाओं का श्रवण करे तो कृष्ण सहज ही में वो कृष्ण का प्रेम पा सके, अन्यथा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण किया और अपने साथ में लिया किसको, स्वरूप दामोदर राय रमन, रूप और सनातन और रघुनाथ रहे उनमें अपनी कृपा संचरित की उनके हृदय में, ऊपर से नहीं दिया उनको अपने लीला में शरीक नहीं किया, जैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद को लेकर के दिन रात इसी कथाओं का आलोचना करते थे, इन लोगों को नहीं लिया, किंतु इनके अंदर में किसी को प्रयाग में किसी को वाराणसी में, रूप गोस्वामी को प्रयाग में और सनातन गोस्वामी को वहाँ काशी में वाराणसी में अपनी शक्ति संचरित करके और उनके द्वारा जगत में इस चीज को प्रकट कराया। जो लोग इस रस में भक्ति रसामृत सिंधु में डूबेंगे तो वो लोग सच में पास होंगे। महाप्रभु के पहले ये सब चीजें नहीं थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सनातन जी का जीव गोस्वामी का उच्छिष्ट ग्रहण करके जो दिया है, पहले ये सब चीजें नहीं थी, सहज कर दिया। तो इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वन को देखते ही कहते थे ये वृंदावन है। नदी को देखते थे, कोई भी नदी जल माने कालिंदी, और जितने कोई ऊंची चीज देखा उसको माने गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन है। और इस तरह से समुद्र को देखा ये जमुना जी हैं, इसमें राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, बस झट उसमें कूद गए। तो इस तरह से ये उत्तम अधिकारी लोगों के लिए ये सब भाव। तो वन लता तरवा अब आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके देख रही है क्या, ओहो कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे चले जा रहे हैं। वन लता तरवा आत्मनि विष्णु बेन, ओ ये तरु हैं, लता हैं, वृक्ष हैं और यहाँ के पहाड़ इत्यादि हैं, मानो विष्णु व्यंजयंती, विष्णु को व्यक्त कर रही अपने हृदय से ये लता। लताओं देखा जैसे फूल फल से भरी हुई हैं, सुंदर पुष्प उसमें लगे हुए, मानो कृष्ण को देख करके हंस रही हूँ। भीतर का प्रेम पुष्प के रूप में आया है और जब कृष्ण आते हैं ना तो उनकी डालियाँ झुक जाती है और फूलों से लदी हुई वो टहनी या तो कृष्ण के सिर पर लग जाती है या उनके पैरों में। गोपियां देख रही हो ये व्यंजयंति विष्णु, ये व्यापक है सर्वत्र, इसलिए ये लताएं ने इनको पहचान लिया। और पहचान करके देखो अपने हृदय को मानो निकाल करके उनके चरणों में पुष्प के रूप में पुष्पांजलि दे रही है। उसी प्रकार से तरु मधु धारा वर्षण कर रहे हैं माने प्रेम के साथ में, ओ हमारे प्रिय ये विष्णु हैं, हमारे अंदर में भी हैं, वही ये हैं, बस उनको देख करके आंख से मधु की धारा बहने लग गई। विष्णु व्यंजयंत माने विष्णु को ही व्यक्त कर रहे हैं, कृष्ण है विष्णु इसलिए उनको व्यंजन कर रही है, अर्थात इसको व्यक्त कर रही है। कोई भी उत्तम अधिकारी वैष्णव होगा विश्व के किसी भी चीज को देख करके उसको कृष्ण की स्मृति आएगी। एक बतलाए ना मुरारी ने मुकुंद, मुकुंद के लिए महाप्रभु के जो परिकर वो कहीं वैद्य थे और हुसैन शाह बादशाह के यहाँ गए चिकित्सा करने के लिए, बातचीत हो रही थी, नाड़ी देख रहे थे, नाड़ी देख करके कुछ बतला रहे थे, इतने में उनका नौकर आया हाथों में मयूर पंख लेकर के और उनको झलने लग गया। देखा जी भारतवर्ष में इसमें जरूर कुछ है, इसीलिए इसके पंखा बना करके इसे रोग इत्यादि दूर हो जाता है, बहुत लोगों की ऐसी धारणा है रोग दूर हो जाता है, इसलिए रोग को दूर करने के लिए ये मयूर पंख से ये करें। कृष्ण भी भगवान उनको मानते हैं, वो भी ये पंखा लगाते हैं इसलिए, और उसको देखते ही जट कृष्ण लीला की स्मृति आई और ऊपर से वो दोतल्ले तितल्ले से नीचे गिर गए। बाई चांस उनको चोट तो नहीं लगी किंतु गिर पड़े। बादशाह अपने आप दौड़ा और दा करके किसी नौकर से कहने की फुर्सत ने दौड़ करके गया और उनको उठाया और फिर ले आया। बोला जी आपको क्या हो गया जी, गिर गए? उन्होंने कहा मुझे मृगी रोग है इसलिए गिर गया। इन्होंने नहीं बतलाया भीतर भी हमको कृष्ण की स्मृति हो गया और लीला में प्रवेश कर गया और गिर गया, मोह जैसा भ्रम हो गया। इसी तरह से ये फूल पुष्प फल इत्यादि लेकर के कृष्ण की जो आराधना करते हैं, मानो इनको विष्णु व्यंजयंती भगवान ही मान करके इनकी सेवा कर रहे हैं। प्रणत भार बिटपा मधुधारा, प्रणत भार बिटपा, बिटपा माने वृक्ष, प्रणत हो करके झुक गए प्रेम से, प्रेम के बोझ से और कृष्ण के चरणों में कुछ आ गई, आंखों से मधु के रूप में धारा बहने लग गई। प्रेम रहिष्ट तनमो व्यप्रशोष्म, और झुक गए, झुक करके पुष्पों का गुच्छ उनके चरणों पर ये दे रहे हैं। हम ऐसे दुर्भाग्य कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकते, और ये सब फल पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा कर रहे हैं, कितने प्रेम से अपने हृदय को निकाल करके दे रहे हैं। और हम लोग कुछ पुष्प लेकर के भी जाएं, लोग क्या कहेंगे, इस लोक लज्जा से हम नहीं जा सकते। यदि हम दूसरा जन्म पाती और वृक्ष लता तरु हो जाती तो हम ऐसे ही कृष्ण की सेवा कर सकते थे, इस व्याकुलता से उनको देखा। आज आज अभी कीर्तन के लिए लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे।